अपने कमरे से बाहर निकलकर अभिमन्यु तेज कदमों से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और तेज आवाज में चिल्लाया, रघु, विनय, कहाँ हो सब? और हमने आप लोगों से क्या कहा था? अभिमन्यु सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। उसने देखा हॉल में रघु और विनय, साथ ही विला के गेटकीपर, सिक्योरिटी गार्ड और केयरटेकर चुपचाप खड़े थे। सबने हाथ बांध रखे थे, नजरें झुकी हुई थीं। शांता काकी अभिमन्यु के पीछे पीछे आ रही थीं। अभिमन्यु की तेज आवाज सुनकर इप्सित अभी अगले ही पल अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकली। नीचे आने से पहले उसने ऊपर से ही हॉल में झांक कर देखा। जब अभिमन्यु नीचे उतरा, इप्सित अभी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई और मन ही मन कहने लगी, अभिमन्यु इतने गुस्से में क्यों है? कहीं ये अपने गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले, हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। इप्सित अभी कमरे से निकलकर सीधे नीचे आकर हॉल में अभिमन्यु के पीछे खड़ी हो गई। शांता रघु और विनय के साथ खड़ी थी। अभिमन्यु ने तेज आवाज में चिल्लाया, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने आप लोगों से कुछ कहा था, क्या आप लोग हमारी कही बातें इतनी जल्दी भूल जाते हैं? इप्सिता अभिमन्यु की बातें सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, अभी तक तो अभिमन्यु इतने घबराए हुए थे, इतना पैनिक हो रहे थे, और अब ये इतने गुस्से में इन लोगों को क्यों डांट रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि अभिमन्यु उन दोनों के करीब बढ़ा और वो दोनों डर के मारे दो दो कदम पीछे हटने लगे। अभिमन्यु ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आप लोगों को हमारी बात सुनाई दे रही है या नहीं? हमने क्या कहा था आप सबसे? रघु और विनय के मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी, वे अभिमन्यु की बात का कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। वहीं किनारे खड़ी शांता आगे बढ़ी और माफी मांगते हुए बोली, माफ करिएगा कुंवर सा। अभिमन्यु ने शांता की तरफ देखते हुए कहा, शांता काकी आप चुप रहिए, हम आपसे नहीं पूछ रहे, इन दोनों से पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों को अब हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? रघु और विनय अभिमन्यु की आवाज सुनकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोले, नहीं कुंवर सा, हम लोग बस। अभिमन्यु ने उनकी बात पूरी होने भी नहीं दी और बोला, हमने आप सबसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमें हमारे कमरे में लाइटिंग का पूरा सिस्टम चाहिए, इन्वर्टर और जनरेटर सब कुछ रेडी चाहिए हमारे आने के बाद, और इमरजेंसी के लिए पावर बैटरियों वाली लाइट्स और कैंडल्स चाहिए, लेकिन हमारे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, हम जान सकते हैं क्यों? हमने साफ साफ बोला था कि एक पल के लिए भी हमारे कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए था, पूरे विला में अंधेरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी देर तक अंधेरा था, क्यों? विनय रघु की तरफ देखते हुए बोला, हमने इनसे बोला था कि ये आपके कमरे में सारे इंतजाम, वो बोल ही रहा था कि अभिमन्यु से घूरने लगा। तभी रघु ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, अरे तुमने हमसे कब कहा था? ये झूठ बोल रहे हैं कुंवर सा। अभिमन्यु ने उन दोनों की तरफ देखकर अपनी आंखें कसकर बंद की और तेज आवाज में चिल्लाया, चुप करो, बहुत हो गया, हम यहाँ पर आप दोनों की बहस नहीं सुनना चाहते और ना ही हम यहाँ पर कोई सफाई मांगने आए हैं। अब हमारी बात आप सब बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए, हमें अपने कमरे में लाइट का हर वो सोर्स चाहिए जो भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर दोबारा हमारे कमरे में इस तरह का अंधेरा हुआ तो हम आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं ना, हमें इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे दोनों ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, माफ कीजिएगा कुंवर सा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हम आज ही सारे इंतजाम कर देंगे। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला और वे लोग तुरंत ही भागते हुए विला से बाहर चले गए। अभिमन्यु ने उन दोनों को इस तरह भागते देखकर ना में अपना सिर हिलाया और वो हताश होकर सीधे अपने कमरे में चला गया। इप्सिता वहीं खड़ी शांता को देख रही थी। शांता भी चुपचाप किचन के बगल में बने अपने छोटे से कमरे में चली गई। उन सब लोगों के जाने के बाद इप्सिता भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। इप्सिता मन ही मन कहने लगी, हमें शायद अभिमन्यु के पास जाना चाहिए, पता नहीं क्यों वो इतनी ज्यादा गुस्से में है, और अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ हमें उनसे बात करनी चाहिए। इन सब के बारे में सोचते हुए इप्सिता अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लगी। अभिमन्यु अपने कमरे में पहुंच गया था। उसने जल्दी से टेबल पर रखे पानी के जग से पानी ग्लास में निकाला और एक सांस में ही पूरा पानी पीकर ग्लास को पटकते हुए टेबल पर रखा और अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। इप्सिता अभिमन्यु के कमरे में आई और उसने अभिमन्यु को इस तरह अपना सिर पकड़े हुए देखा तो धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु व्हाट हैपेंड, आप ठीक है ना? इप्सिता अभिमन्यु के लिए काफी चिंतित थी, इसलिए वो उसे ऐसे परेशान देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु से सवाल किया, अभिमन्यु ने अपने सिर पर से हाथ हटाया और इप्सिता की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हम ठीक हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं इप्सिता? काफी रात हो गई है, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा, हाँ हम चली जाएंगी अपने कमरे में, लेकिन उससे पहले हमें आपसे कुछ पूछना है। अभिमन्यु ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या पूछना है आपको हमसे? और इतना बोलते हुए वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह नजरें चुराते देखकर अपने मन में बोली, ये जिस तरह से इतना परेशान हो रहा है, ये सब कोई छोटी बात तो नहीं लग रही है, जरूर इसके पीछे कुछ तो वजह है, वरना अभिमन्यु इस तरह से अंधेरे में इतना जोर से नहीं चिल्लाता, और उसके बाद घर के नौकरों की भी अच्छी खासी क्लास लगाई है इन्होंने, जरूर कोई बड़ी बात है। अपने मन में ये सब सोचती हुई इप्सिता चलकर थोड़ा आगे आई और अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हैं कि हमारी तरफ अपनी पीठ करके खड़े हो गए। अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो एक्चुअली हम अभिमन्यु बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि उसे शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इप्सिता की इस बात का क्या जवाब दे। इप्सिता ने उसके सामने आकर कहा, आप हमें ये बताइए कि आप अंधेरे में इतना ज्यादा घबरा क्यों गए थे? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी, उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा आपसे कि हमें अंधेरे से डर लगता है? इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए कहा, अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आप अंधेरे में इतनी ज्यादा पैनिक क्यों हो गए थे और इस तरह से क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हम जान सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, वो तो एक्चुअली हम यहाँ पर रहते नहीं हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं है, तो बस। अभिमन्यु अटकती हुई आवाज में कुछ बहाना बनाने के बारे में सोच रहा था और इप्सिता से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी इप्सिता आगे बढ़ी और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया, वो बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इप्सिता ने अभिमन्यु को थोड़ा सा अपने करीब खींचा और उसे बिस्तर पर बिठाकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अभिमन्यु देखिए, आपको हमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, और आप इस तरह से बहाना बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हर इंसान के अपने डर होते हैं, अगर आपको अंधेरे से डर लगता भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इप्सिता बड़े ही चिंतित भाव से बोल रही थी। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, हम भला अंधेरे से कैसे डर सकते हैं? अगर हम भी अंधेरे से डरने लगे तो लोग हमें भी जज करेंगे। इप्सिता, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और अपने रूम में जाकर सो जाइए, अभिमन्यु भारी आवाज में बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने किसी बड़े डर को छिपा रहा हो। वो अभी भी इप्सिता से खुलकर इस बारे में बात नहीं करना चाहता था।
इप्सिता भी इस बात को समझ रही थी, इसलिए उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह की बातें बोलकर हमें बहला सकते हैं तो शायद आप गलत हैं। हम इतने भी नासमझ नहीं हैं। उस वक्त हम आपके पास थे और हम आपकी बॉडी की कंपन को महसूस कर रहे थे। जब आप अंधेरे में डर रहे थे, आपका पूरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था और आप बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे, और ऐसा तभी होता है जब आपका डर आप पर हावी हो। इप्सिता के मुंह से पूरी बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ा तनाव में आने लगा। इप्सिता उसे तनाव में आता देख समझाते हुए बोली, हमने आपको अपने बारे में कितना कुछ बता दिया है, और आप हैं कि हमें अपने बारे में अभी भी कुछ नहीं बताना चाहते। हालात जैसे भी हों अभिमन्यु, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, और अगर आप अभी जिस तरह से ये बात छिपा रहे हैं, बाद में इसी तरह से सारी बातें छिपाते रहें, तो क्या आपको लगता है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिन चल पाएगा? इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु उससे नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में बोला, इप्सिता, वो हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्रमशः